51 देशभक्त नव निर्माण के कार्य में जुट जाएं।
प्रश्न:
एक प्रजातंत्र में देशभक्तों के कर्तव्य क्या हैं?
टू: युग निर्माण योजना द्वारा प्रसारित 10 रचनात्मक नव निर्माण के कार्यों का उल्लेख करते हुए युग की आवश्यकता पर लघु निबंध लिखिए।
तीन: लोकसेवक अपना सारा समय किन दो कामों में खर्च करते थे? चार: हमारे देश के उस प्रकार उन्नति न कर सकने के क्या कारण हैं जिस प्रकार एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते हमारी उन्नति हो सकती थी?
5: राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति के लिए नवयुवकों को क्या करना चाहिए?
6: राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता किस प्रकार अपना समय व्यय कर देते हैं? 7: ऐसे कौन से 10 सूत्री कार्यक्रम हैं जिनके अंतर्गत हम नवयुवक भी देश की प्रगति में सहायक बन सकते हैं?
8: एक एक कार्यक्रम का अलग अलग वर्णन करो। कथाएं: 1.0 जवाहरलाल ने एक दिन शास्त्री जी को जंगल का फूल कह दिया।
इस पर शास्त्री जी बोले, पंडित जी, जंगल में जो आजादी है, स्वच्छता है, वह बाग में कहाँ?
नेहरू जी बोले, लेकिन देवताओं के सिर पर चढ़ते हैं बगीचे के ही फूल।
स्वाभाविक हास परिहास में शास्त्री ने कहा, फूल देवताओं के लिए ही क्यों खिले? क्या संसार में अन्य जीव तुच्छ हैं जो उन्हें सौंदर्य और सुगंध से वंचित किया जाए?
और 1.0 नेहरू को इसका कोई उत्तर न देते बना। 2: सरदार वल्लभ भाई ने अपनी माँ से देश सेवा की आज्ञा मांगी।
माँ ने कहा, बहुत कठिन काम है बेटा, देश सेवा गद्दी पर बैठना और हुकूमत चलाना नहीं, उसमें झाड़ू बुहारी से लेकर दुष्टों से संघर्ष तक के कठिन काम करने पड़ते हैं। जिस दिन मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि तू कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है, उसी दिन आज्ञा दे दूंगी।
सामने दीपक जल रहा था, सरदार पटेल ने उसकी लौ पर हथेली रख दी। हाथ जल गया, घाव पड़ गया, पर पटेल ने सी तक न की।
उनकी माँ ने हाथ हटाया और उन्हें छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, तू देश सेवा के लिए सहर्ष जा सकता है।
3: एक बार ईसा ने देशवासियों से धन मांगा, लोग मुक्त हस्त धन देने लगे। उन धन देने वालों की लिस्ट बन रही थी, वहां बैठे हर आने वाले को देखते रहे। एक स्त्री आती, खुद आधा पेट रहकर एक पैसा दान पात्र में डाल आती।
आखिरी दिन लोग सुनने आए, सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? तो ईसा ने कहा, जो तंगी में भी दे सकता है वही देशभक्त है।
4: आजाद हिंद सेना के लिए धन की आवश्यकता थी, उसके लिए सुभाष बाबू की माला नीलाम की जाने लगी।
तीसरा बोली, मैं एक व्यक्ति ने अपने घर का सारा सोना देते हुए कहा, नेताजी, क्या हमारी पात्रता की परीक्षा धन से ही होगी?
नेताजी चौंके और बोले, तुम सच कहते हो, सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य है, इसलिए उन्होंने धन मांगने की अपेक्षा जवान मांगे। वह व्यक्ति पहला था जिसने आजाद हिंद सेना में अपना नाम लिखाया।
5: यहूदी समझते थे ईसा जादू से समुद्र के दो टुकड़े कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ईसा बोले, तुम सब मेरे पीछे कूदो। यहूदी एक के पीछे एक कूदते गए और एक पंक्ति और साहस की यही भावना आज तक यहूदियों को विजयी बना रही है।
6: शिवाजी से आत्मसमर्पण कराने के बाद समर्थ गुरु रामदास ने कहा, ले यह तलवार, राजगद्दी पर बैठ और शत्रु से संघर्ष कर। आज से मैं महाराष्ट्र भर में घूमेगा, व्यायामशालाएं चलाऊंगा ताकि लोग स्वस्थ और बलिष्ठ बने और तेरी फौज कम न हो।
शिवाजी खड़े रामदास का मुंह ताकने लगे तो वे हंसकर बोले, अरे खड़ा क्या देखता है, तू समझता है मेरा काम छोटा है? अपने देश और जाति के उत्थान की भावना से किया गया हर काम महान होता है। 7: सार्वजनिक चिकित्सालय के लिए लोग जमशेद जी टाटा के पास दान के लिए गए तो पर लोग हिचकिचा रहे थे कि वे 150 रुपये दे दे तो ही बहुत है,
पर जब जमशेद जी ने 10,000 दिया तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए।
उनका आश्चर्य दूर करते हुए टाटा जी ने कहा, कंजूस तो मैं व्यर्थ के कामों के लिए हूँ, लोक सेवा के लिए कंजूसी करूँ तो फिर मेरी देशभक्ति का क्या होगा?
8: गांधी जी ने सबको काम बांट दिया, सब लोग चले गए तो खुद ने झाड़ू उठाए और पड़ोस के गांव की सफाई के लिए चल पड़े। उन्हें हाथ में झाड़ू लेकर जाते देखकर महादेव भाई के मुंह से अनायास ही निकल गया, तुम सबसे बड़े देशभक्त हो बापू। 9: मुर्गे ने बांग दी तो पड़ोसी मुर्गा भी बोल उठा, पहले मुर्गे ने डांट कर कहा, मेरी नकल करता है दुष्ट, मार डालूंगा। पास बैठे बूढ़े मुर्गे ने कहा, तात, संसार को जगाने को दायित्व अकेले तुम पर ही नहीं, जो भी आगे आता है उसका स्वागत करो, उसे धिक्कारो मत। पहला मुर्गा बड़ा लज्जित हुआ।
10 वर्षा की बात है,
गीली मिट्टी टिक नहीं रही थी, एक बांध का छेद बढ़ता जा रहा था, उससे देश के डूब जाने की आशंका थी।
क्या किया जाए?
एक आदमी आगे बढ़ा और जहां बांध टूट रहा था वहां लेट गया।
थोड़ी देर में ठंड में उसका शरीर अकड़ गया तो उसे लोगों ने उठाकर आग के पास पहुंचाया और दूसरा लेट गया।
सारा गांव इसी तरह पानी को तब तक रोके रहा जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं आ गए। इंजीनियर ने ग्रामीण भाइयों का त्याग देखकर कहा, जहां तुम्हारे जैसे त्यागी व साहसी हों उस देश का भी अहित नहीं हो सकता। 52: सच्चे नागरिक बने और समाज में स्वस्थ परंपरा डालें। प्रश्न:
1. अपने देश के प्रति नागरिक का कर्तव्य क्या है? 2. दूसरों की सुविधा का ध्यान रखने से क्या लाभ होता है? 3. घर मोहल्ले एवं नगर में सफाई रखने के लिए क्या किया जाए। 4. नागरिकता किसे कहते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लोग किस प्रकार गंदगी फैलाते हैं।
5. मनुष्यता की आरंभिक शिक्षा क्या है। 6. ईश्वर भक्त से भी पहले नागरिक मर्यादाओं एवं जिम्मेदारियों को क्यों निभाना चाहिए। 7. मनुष्य का प्रामाणिक एवं नैतिक कर्तव्य क्या है।
8. समय की बर्बादी धन की बर्बादी से भी अधिक हितकर है, सिद्ध करें। 9. व्यायाम में सफलता का रहस्य क्या है।
10. मिलावट से क्या हानि है। कथाएं।
एक बात बंगाल के कुमिल्ला जिले की है। एक अतिथि के स्वागत में मेजबानों ने तरह तरह के मिष्ठान व पकवान बनवाए। माननीय अतिथि भोजन के लिए बैठे और उतना सारा तरह तरह का भोजन परोसा गया तो वह देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, जिस देश में हजारों लोगों एक को समय भोजन मिलता हो, वहां ऐसा भोजन करने का अधिकार नहीं।
यह अतिथि सीमांत गांधी खान अब्दुल फारखां थे। 2. सतारा जिले का दौरा करने न्यायमूर्ति महादेव रानाडे तो पैदल गए, पर अपने पत्नी को बैलगाड़ी कर दी। गाड़ी रवाना हुई तब उन्होंने हिदायत दे दी, तुम अपने को जज की पत्नी नहीं साधारण नागरिक मानकर चलना। श्रीमती रानाडे ने एक जगह पके आम देखे तो उनका खाने का मन कर आया।
गाड़ी खड़ी कराकर जैसे ही वे आम तोड़ने को हुई कि आम ऊपर से टूटा और उनके सोने के कंगन पर गिरा।
कंगन चूर चूर होकर छितर गया, तभी वहां रानाडे पहुंच गए। धर्मपत्नी ने दुखपूर्वक सारी बात कही तो उन्होंने इतना कही, कहा, यह दूसरे के आम बिना पूछे तोड़ने का फल है।
3. रेलगाड़ी आने का समय हो गया है, इधर पुल टूटा पड़ा है।
भेड़ चरा रहे बालक ने यह देखा तो उसका हृदय आशंका से भर गया। भेड़ों को छोड़कर वह रेल की पटरी के सहारे उधर ही भागा जिधर से रेल आनी थी।
थोड़ी देर में रेल आती दिखाई दी, उसने अपना कुर्ता उतार कर हिलाता और खतरे की सूचना देना शुरू किया। ड्राइवर कुछ समझा नहीं, पर युवक को पटरी से हटाने के लिए वे बराबर सीटी देते रहे।
युवक पीछे हटता भी जाता था और कपड़ा भी हिलाता जा रहा था। रेलगाड़ी रुकते रुकते उसकी छाती पर चढ़ गई।
ड्राइवर और अन्य सवारियों ने उतर कर देखा तो 10 गज की दूरी पर पुल टूट पड़ा था। लोगों में उस नागरिक के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी।
4. एक दिन तुलाधार वैश्य के पास एक साधु जाकर बोले, बेटा जा कुछ दिन तीर्थ यात्रा भी करके आ, उससे शांति मिलेगी।
तुलाधार ने उत्तर दिया, मेरे गांव में कितने ही लोग भूख से पीड़ित हैं, कितनों को दवा दारू की आवश्यकता है। 4 पैसे कमाकर इन्हें रोटी कपड़े और दवा दारू की व्यवस्था करता हूँ, यही मेरी तीर्थयात्रा है, इसी में मुझे शांति मिलती है।
साधु को अपनी मिथ्या आस्तिकता का अहंकार दूर हो गया और उस दिन से तुलाधार को अपना गुरु मान लिया।
5. बच्चा तालाब में डूब रहा था और उसका पिता किनारे पर खड़ा उपदेश दे रहा था, ले मेरा कहना न मानने का फल भुगत। तभी एक सज्जन उधर से आए और कूदकर बच्चे के प्राण बचाए।
बाहर निकले तो पिता से बोले, महोदय उपदेश हमेशा अच्छा नहीं होता, कर्तव्य भी निभाना चाहिए। 6. एक अंग्रेज ने सड़क पर बैठे एक मोची के लड़के से जूते गंठवाए। पैसे पूछने पर लड़के ने बताए 10 पैसे। अंग्रेज ने अपनी शान दिखाते हुए 1 रुपया फेंका और चल पड़े। तभी पीछे लड़का भागा और 90 पैसे वापस करता हुआ बोला, श्रीमान जी यह पैसे।
अंग्रेज बोला, हमने खुशी से दिए हैं। पर बच्चे ने अधिक पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, महोदय अपने हक से अधिक लेना मेरे लिए पाप है। अंग्रेज भारतीय बच्चे का मुंह ताकता रह गया।
53. व्यक्तिगत स्वार्थ भी सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है। प्रश्न।
1. मानव धर्म का मूल आधार क्या है।
2. मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ की अनेक सामाजिक सुव्यवस्थाओं पर ध्यान क्यों देना चाहिए। 3. आधुनिक युग में एकाकी एवं अति सीमित जीवन जीना क्यों कठिन है। 4. सिद्ध कीजिए कि सुरक्षा और व्यवस्था का सारा ढांचा समाज की ही देन है। 5. व्यक्तिगत प्रगति एवं शांति के लिए क्या किया जाना चाहिए।
6. समाज के विकृत होने से मानव भी विकृत कैसे हो जाता है।
7. स्वार्थ एवं परमार्थ का समन्वय किसमें है।
8. सुविकसित समाज में क्या विशेषताएं होती हैं।
9. व्यक्तिगत स्वार्थपरता, मानसिक उच्छापन एवं बौद्धिक संकीर्णता क्यों है। कथाएं। 1. धारा नगरी में आग लग गई। 2. सुकुमार बच्चे आग की लपट में घिर गए। महाराज भोज चिल्लाए, जो इन बच्चों को बजाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा।
भीड़ में से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, तभी एक ओर से एक व्यक्ति आया और आग में घुस गया। दोनों बच्चों को निकाल तो लाया, पर स्वयं बुरी तरह जल गया।
उपचार के बाद पहचान में आया कि वह तो महान उदार और दयालु कवि माघ थे। भोज ने उन्हें शीघ्र शीश झुकाते हुए कहा, कविवर आज तो तुमने काव्य से भी अधिक अपनी कर्तव्य परायणता से सबको जीत लिया।
2. तानाजी के पुत्र का विवाह था, तभी कोंडन दुर्ग के लिए युद्ध की सूचना आ पहुंची। तानाजी ने कहा, अपने देश और समाज के आगे व्यक्तिगत स्वार्थ तुच्छ हैं, वह युद्ध के लिए चल पड़े। युद्ध में जीत उन्हीं की हुई, पर उनका शरीर काम आ गया।
उनकी स्मृति में ही इस दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा गया। 3. एक बार भीषण अकाल पड़ा, मनुष्य और जीव जंतु भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। तब नर्मेद यज्ञ की व्यवस्था की गई, लेकिन अपने शरीर की बलि कौन दे, यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ।
तभी एक युवक सामने आया और बोला, लाखों लोग की रक्षा के लिए मुझे प्राण गंवाने पड़े तो इसे मैं अपने शरीर की सार्थकता ही मानूंगा।
युवक के त्याग देखकर भगवान इंद्र मुग्ध हो गए। उन्होंने बिना बलि लिए ही जब बरसाया, यह युवक शतमेन्यु के नाम से परोपकारी आकाश का जगमगाता नक्षत्र बन गया। 4. एक रोगी व्यक्ति एक गड्ढे को भर रहा था।
एक आदमी ने पूछा, गड्ढा क्यों भर रहे हो? उसने बताया, मैंने सुना है यहाँ देश के सैनिक गुजरेंगे, इसलिए भर रहा हूँ, कहीं वे लोग अंधेरे में इस गड्ढे में न गिर जाएं।
उस आगंतुक ने कहा, लेकिन तुम तो रोगी हो।
इस पर उसने उत्तर दिया, हाँ संभव है मैं मर जाऊं, पर सैकड़ों लोग मरे, उससे तो मेरा अकेले का ही मर जाना अच्छा है। 5. इटावा के एक अध्यापक पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा चुके तो थानेदार ने उनके मुंह की ओर ताकते हुए कहा, चोरी करने वाला तो आपका ही लड़का है, तो क्या हुआ? आपका मतलब यह है कि मैं अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सामाजिक हित का परित्याग कर दूं?
उन अध्यापक ने कहा।
थानेदार ने कहा, यदि हमारे देश में सभी ऐसे हो जाएं तो यह अपराध ही क्यों हो।
54. प्रौढ़ शिक्षा युग की अनुपेक्षणीय मांग। प्रश्न 1. साहित्य द्वारा होने वाले लोगों पर प्रकाश डालिए।
2. अशिक्षितों को अर्ध मनुष्य क्यों कहते हैं? 3. क्यूबा ने अपनी अशिक्षा की समस्या कैसे हल की?
4. सिद्ध कीजिए कि भारत में साक्षरता की प्रगति बहुत ही धीमी है। 5. निरक्षरता की समस्या को हल करने के लिए अशासकीय स्तर पर कौन से कदम उठाने चाहिए? 6. ज्ञानिन से क्या समझते हो?
प्रत्येक शिक्षित का इस युग में क्या कर्तव्य है?
7. साक्षरता प्रसार आंदोलन कैसे चलाया जाए? 8. जनसाधारण में शिक्षा का महत्व प्रतिष्ठापित करने हेतु क्या किया जाना चाहिए?
9. देश में 100% साक्षरता कैसे लाई जा सकती है?
कथाएं 1. तार को किसी की मृत्यु की सूचना समझकर एक घर के अशिक्षित लोग रोने लगे। इसी बीच पड़ोसी आ गए, वे भी अशिक्षित थे, जो भी आता रोने लगता। देखते देखते आधा गांव जा पहुंचा। कोई किससे बिना कुछ रोने लगता, मानो रोना कोई पुण्य हो। आखिर एक पढ़ा लिखा लड़का आया, उसने पूछा, बात क्या है?
घर वालों ने तार हाथ में थमा दिया। उसे पढ़ते ही लड़के को हंसी आ गई। उसने कहा, मूर्खों पढ़े लिखे होते तो यह हंसी क्यों होती? यह तो खुशी का तार है, मृत्यु का नहीं। 2. एक जर्मन पर्यटक ने भारत से लौटकर एक लेख में लिखा कि कर्ज में पैदा होने, जीवन भर कर्ज चुकाने और कर्ज में ही मर जाने का उदाहरण देखना हो तो भारतवर्ष जाएं, जहां के अशिक्षित लोगों से अंगूठा निशान लेकर साहूकार लोग 50 रुपये का ऋण पत्र 5,000 का बना लेते हैं और उसी की ब्याज में जीवन भर उससे कीमत लेती हैं। मर जाने पर कर्ज का भुगतान उसके लड़के करते हैं।
3. सेंट पेरे अफ्रीका गए। उस समय के लोग अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानते थे। वे लोग गुलाम बनाकर दूसरे देशों को ले जाए जाते, जहां उन पर मनमाने अत्याचार होते।
संत पियरे ने अनुभव किया कि यह सब अशिक्षा के कारण है। उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। इसमें उन्हें कठिनाई तो बहुत हुई, पर अफ्रीकनों में बौद्धिक चेतना विकास हुआ। उसी का फल है कि आज अफ्रीकी देश भी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं।
4. गांधी जी से एक व्यक्ति ने पूछा, देश स्वतंत्र हो गया, अब आपका अगला कार्यक्रम क्या होगा?
प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार। गांधी जी बोले, जब तक इस देश की अशिक्षित जनता को विचार करना नहीं आता, तब तक आज़ादी निरर्थक है। विचार ही कुसंस्कार काटते हैं, पर वे बिना शिक्षा पैदा नहीं होते, इसलिए हर प्रौढ़ को पढ़ाना आज की पहली आवश्यकता है।
5. 40 वर्ष तक निरक्षर रहने वाली अमेरिका की एक स्त्री मेरी एन को पढ़ने की रुचि जागृत हुई तो लगातार पढ़ती ही चली गई। 67 वर्ष की आयु में जब वे मरी, तब 5 विषयों में ए
थी। उन्होंने यह कहावत झूठी कर दी कि बूढ़े तोते पढ़ नहीं सकते। 6. जवाहरलाल जी ने एक दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री से कहा, देश में शिक्षा बढ़ रही है, क्या यह प्रसन्नता की बात नहीं? नहीं, श्री शास्त्री जी बोले, जब तक यहाँ के बुजुर्ग अशिक्षित हैं, कुछ लड़कों के पढ़ जाने से भी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा की अपेक्षा जीवन में संस्कारों का महत्व अधिक है। जो संस्कार अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा दिए गए होंगे, वह देश की कहाँ तक उन्नति कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। जवाहरलाल जी ने कहा, तुम्हारा कहना सच है, प्रौढ़ शिक्षा शिक्षा से भी बढ़कर है।
55. स्वास्थ्य शिक्षा की एक महती आवश्यकता। प्रश्न 1. मनुष्य की अल्पायु एवं अस्वस्थता का मूल कारण क्या है?
2. संपदाएं एवं विभूतियां कैसे उपलब्ध होती हैं? 3. श्रम की प्रतिष्ठा प्रतिपादित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 4. हिंदू जाति के घटते जाने का मूल कारण क्या है? 5. व्यायामशालाओं की आवश्यकता क्यों है?
6. दिन भर लोहा पीटने वाले लोहार की अपेक्षा 2 घंटे कसरत करने वाला पहलवान अधिक ताकतवर क्यों होता है?
7. खेलकूद के लाभ बताओ।
8. व्यायाम आंदोलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। कथाएं
1. एक व्यक्ति कई दिन तक बाहर रहता, लौटकर आता तो पड़ोसी पूछता, आजकल आप क्या कर रहे हैं? बहुत कम दिखाई देते हैं।
वह व्यक्ति बोला, भाई अब शरीर तीसरी अवस्था में है, भगवान की सेवा और पूजा, परमार्थ भी तो करना चाहिए।
एक दिन उस व्यक्ति ने छिपकर तलाश की तो पता चला कि वह सज्जन तो गांव-गांव जाकर व्यायामशालाएं खुलवाते हैं। लौटने पर पूछा, आप तो कहते थे आप पूजा पाठ करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि आप लोगों को व्यायाम की शिक्षा देते हैं।
वह व्यक्ति बोला, कोई भी समाज सेवा ईश्वर का ही भजन है, आज इसी भजन की उपयोगिता भी है।
दो सेक्रेटरी ने कहा, सर आप इस देश के मालिक हैं, अपनी कुर्सी मेज अपने हाथ से बनाई है, अच्छा नहीं लगता।
इस पर उन्होंने उत्तर दिया, प्रश्न फर्नीचर का नहीं, स्वस्थ रहने के लिए कोई भी हो श्रम आवश्यक है। यह व्यक्ति था तुर्की का निर्माता कमाल पाशा। 3. समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी से कहा, तू अत्याचारियों के खिलाफ सुदृढ़ सेना खड़ी कर। इस पर शिवाजी बोले, ऐसे बलवान सिपाही मिलेंगे कहां, देश तो विलासिता में डूबा पड़ा है, नवयुवक निष्क्रिय हो रहे हैं। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, उसके लिए गांव-गांव व्यायामशालाएं चलानी पड़ेंगी। यह कार्य स्वयं उन्होंने किया। महाराष्ट्र में 6,000 अखाड़े व्यायामशालाएं खोलकर लोगों में स्वास्थ्य संवर्धन की रुचि पैदा की, साथ ही सेवा और राष्ट्रीयता के भाव भी। 4. गांधी व्यायाम की उपयोगिता समझा रहे थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ा, बापू आप तो कहते हैं व्यायाम आबाल वृद्ध सबको करना चाहिए, पर मैं कैसे कर सकता हूँ। गांधी जी बोले, व्यायाम का अर्थ केवल दंड बैठक से नहीं, स्त्रियां चक्की पीसती हैं, उनके लिए यही सर्वोत्तम व्यायाम है, बच्चे दिन भर खेलते हैं, उससे बढ़िया व्यायाम क्या हो सकता है।
आप तो प्रतिदिन टहलने जाया कीजिए, बूढ़ों के लिए टहलना ही व्यायाम है।
देखो मैं भी टहलने जाता हूँ। उस पर लोग खूब हंस चुके तो बोले, देखो यह भी हंसना भी एक व्यायाम हो गया। 5. समर्थ गणराज्य के लिए अपनी दृष्टि में कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं। एक व्यक्ति ने मदन मोहन मालवीय से प्रश्न किया। श्री मालवीय जी का उत्तर था, हर गांव में पंचायत और पाठशाला के साथ मल्लशाला व्यायामशाला होना अनिवार्य है, जहां युवक आए और नियमित व्यायाम का अभ्यास भी कर सकें।
6. जेल ने देखा, कैदी को कल फांसी होने वाली है, आज कसरत कर रहा है। उसने पूछा, महाशय आपको तो कल फांसी लगने वाली है, कसरत करने से क्या लाभ।
उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या आपका यह मतलब है, जिस परमात्मा ने हमें स्वस्थ पैदा किया उसके पास अस्वस्थ होकर जाऊं और अपना जीवन भर का क्रम बिगाड़ूं। जेलर को स्तंभित करने वाले रामप्रसाद बिस्मिल थे। 7. एक दुर्बल और रोगी लड़का अपने पिता से बोला, पिताजी मैं एक दिन पहलवान ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पहलवान बनोगे। पासवर्ती लोग हंस पड़े, पर लड़का उपहास सहकर भी निराश न हुआ। नियमित व्यायाम प्रारंभ किया और एक दिन सचमुच ही ने केवल अच्छा पहलवान ही बना, वरन कसरत की अनेक विद्याएं P0T0 के अभ्यास बनाने के कारण सेंडो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 56. अध्यापक अपने महान पद, गौरव और उत्तरदायित्व को निभाएं। प्रश्न 1. अध्यापक दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं है, इस कथन की पुष्टि करते हुए दर्शाइए कि अध्यापक के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं।
2. छात्रों के गुण, कर्म, स्वभाव पर विद्यालय का प्रभाव सर्वाधिक क्यों होता है। 3. प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति किन लोगों के हाथ में थी, उससे क्या लाभ हुआ। 4. शिक्षक को राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाता है।
5. अध्यापकों के प्रमुख कर्तव्य बताइए।
6. अध्यापक में क्या दो गुण होना चाहिए।
7. अध्यापक का रहन सहन, सादा जीवन, उच्च विचार पर आधारित क्यों होना चाहिए।
8. उपदेश नहीं चरित्र का क्या प्रभाव पड़ता है, सिद्ध करें।
9. आत्मचिंतन, आत्म सुधार एवं आत्मनिर्माण से क्या समझते हो। 10. अध्यापन कला के आवश्यक तत्व बताइए। कथाएं 1. महर्षि अश्वलायन को इस बात का बड़ा गौरव था कि उनका पढ़ाया हुआ हर छात्र राष्ट्र का प्रतिभाशाली और यशस्वी व्यक्ति है। प्रधानमंत्री, सेनापति से लेकर कुरुपत का कृषि पंडित भी उन्हीं का छात्र था। तभी एक दिन उन्होंने सुना, उन्हीं का एक छात्र देवदत्त दस्यु हो गया है।
उसके क्रूर कर्मों के कारण समस्त कुरुपद में त्राही त्राही मच गई है, कोई भी सेना और सेनापति उसे वश में नहीं कर सका।
महर्षि के लिए यह संदेश वज्र घात के समान था। भीषण रात, आकाश में बादल घिरे हुए, महर्षि को रोका भी गया, पर वे नहीं रुके, सीधे वहां पहुंचे जहां देवदत्त दस्यु कर्म किया करता था। अंधेरे में एक छाया देखते ही देवदत्त ने ललकारा, रुक जाओ नहीं तो खग प्रहार करता हूं, किंतु आगंतुक रुका नहीं। देवदत्त का खग छूटा और आगंतुक में माथे पर जा घुसा।
रक्त के फवारे के साथ आकाश में बिजली चमकी और देवदत्त महर्षि के चरणों में गिर गया।
गुरुदेव यह क्या हुआ, तीव्र वेदना में देवदत्त चिल्लाया।
महर्षि ने कहा, वत्स मेरे शिक्षण में कुछ कमी रह गई थी, उसका दंड मुझे मिलना ही था।
देवदत्त गुरु का आशय समझ गया, फिर उसने कभी भी डकैती नहीं डाली। 2. कर्णवाल पढ़ने का ग्राम पेंजांस, एक लड़का पढ़ना चाहता था पर उसे डॉक्टर की नौकरी करनी पड़ी।
उसके पिता ने कहा, बेटा आदमी पढ़ना चाहे तो हर घर स्कूल है।
लड़का वहीं पढ़ने लगा, बचे समय का सदुपयोग वह स्कूल की किताबों के अतिरिक्त डॉक्टरी पढ़ने लगा और 18 वर्ष की आयु में उसने वनस्पति, भूगर्भ, सर्जरी तथा रसायन शास्त्र के एम ए से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाद में सर हम्फ्री डेवी के नाम से यही अध्यवसाय बालक महान वैज्ञानिक के रूप में विख्यात हुआ।
तीन, पिता इतना गरीब था कि बच्चे की फीस चुकाना भी मुश्किल और लड़का इतना लगनशील और परिश्रमी कि स्कूल में पढ़ने के साथ उसने क्लर्क की नौकरी भी कर ली। स्टेनोग्राफर और मुनीम का भी काम उसने किया, कामर्स पढ़ी और प्रति माह 7 बचाया भी।
टोरंटो कनाडा के नाई परिवार में जन्मा टॉक्सन नामक यही लड़का अपनी इस लगन, दृढ़ निश्चय और परिश्रम के कारण 128 समाचार पत्रों व पत्रिकाओं, 15 रेडियो व टेलीविजन स्टेशनों, 150 व्यापारिक व तकनीकी पत्रिकाओं, 2 प्रकाशन संस्थाओं, 2 यात्रा एजेंसियों का मालिक है। 4, एक लड़का कामर्स पढ़ रहा था, अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उसे संगीत अच्छा जान पड़ा। अब वह संगीत सीखने लगा, किंतु इसी बीच उसकी रुचि दर्शन की ओर मुड़ गई, इसलिए संगीत छोड़कर वह दर्शन पढ़ने लगा। 10 वर्ष में वह 10 विषय बदल चुका और एक भी नहीं सीख सका। एक साधु ने उसे समझाया, बेटा एक निश्चय कर, फिर सांसारिक आकर्षण छोड़कर उसी में जुट जाओ, तभी सफलता मिलेगी। 5, रतलाम के महाविद्यालय में MA कक्षा खुलवाने की बात आई। पैसा कौन दे, सभी छात्रों ने निश्चय कर बूट पॉलिश का काम प्रारंभ किया और कुछ ही दिन में MA की कक्षा खुलने योग्य धन की प्राप्ति हो गई। 6, एरिट्रायस की धार्मिक विषयों में रुचि थी, अतएव उसके आग्रह पर पिता ने उसे जीनों की पाठशाला भेज दिया। एरिट्रायस बहुत दिन में घर लौटे तो पिता ने पूछा, बेटा वहां से क्या सीख कर आए हो? पुत्र ने उत्तर दिया, बाद में ज्ञात हो जाएगा। एक दिन पिता किसी बात पर रुष्ट हो गया, उसने युवा पुत्र की बुरी तरह पिटाई की, फिर भी पुत्र ने कुछ प्रतिवाद न किया और न उत्तर दिया।
पिटने के बाद वह फिर शांतचित अपने काम से लग गया, न आत्महत्या की धमकी दी, न घर से भागा।
यह देखकर पिता का हृदय भर आया, वह पुत्र से माफी मांगने लगा तो पुत्र ने कहा, पिताजी यह तो मेरी परीक्षा थी कि मुझे मेरे गुरु ने जो नैतिकता, सदाचार, सहिष्णुता और ध्येयनिष्ठा सिखाई, उसका पालन भी कर सकता हूँ या नहीं। पिता का हृदय ऐसे शिक्षण के प्रति कृतज्ञता से भर गया। 7, संस्कृत का उद्भट विद्वान वरदराज कभी विद्यालय का सबसे बुद्धू लड़का था।
बहुत पढ़ने पर भी उसे कुछ याद न होता।
दुखी होकर वह घर से भाग गया।
रात एक सराय में बिताए, वहां उसने देखा एक टूटे पंखों वाला पतंगा दीवार पर चढ़ता और गिर जाता है। 20 बार असफल रहने के बाद 21वीं बार वह दीवार पर चढ़ गया।
इस दृश्य से वरदराज को एक नई हिम्मत मिली।
वह घर लौटा और फिर पढ़ने में जुट गया, इस बार उसकी असफलता सफलता में बदल गई।
58, नवयुवक सज्जनता और शालीनता सीखें। प्रश्न,
एक निकट भविष्य में यदि हमें अपने समाज को समुन्नत देखना है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? 2, मनुष्य की प्रगति किन गुणों पर अवलंबित है?
दुर्गुणी व्यक्ति तथा सद्गुणी व्यक्ति किस प्रकार भिन्न कहे जा सकते हैं?
3, उठती आयु में हमें सद्गुणों के साथ साथ और किन किन गुणों को हस्तगत करना चाहिए? 4, सद्गुणों और अन्य गुणों में कौन सा गुण श्रेष्ठ है व क्यों?
5, दुर्गुणी व्यक्ति अपने स्वतः के लिए किस प्रकार हानिकारक है? 6, सच्चे अध्यापक और सच्चे अभिभावक कौन कहे जा सकते हैं,
किस आधार पर? 7, क्या आप बता सकते हैं कि आज के होनहार बालकों में कौन से दुर्गुण अधिक पाए जाते हैं? 8, मर्यादा के उल्लंघन से क्या हानियां हैं? 9, आज के युवकों में अनुशासनहीनता क्यों है, उन्हें कैसे सभ्य नागरिक बनाया जा सकते हैं?
कथाएं। 1, पिता ने पुत्र को कुछ फल लाने को पैसे दिए। लड़का वहां से चल पड़ा तो उसे एक कन्या दिखाई दी जिसकी धोती फटी हुई थी, उसे अपने शरीर को ढके रखने में कष्ट हो रहा था। पुत्र ने पिता के दिए पैसे से एक धोती खरीदी और उस कन्या को देकर खाली हाथ घर लौटा।
पिता ने पूछा, फल कहाँ है? लड़के ने सारी बात सच सच बता दी।
पिता बोला, बेटा तूने तो अम्रफल ला दिया। यही लड़का संत रंगदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 2, भिक्षु कश्यप ने श्रावस्ती में योग के कई चमत्कार दिखाए तो उनका यश दूर दूर तक फैल गया, पर अब कश्यप को आत्म कल्याण की साधनाओं के लिए समय ही न मिलता, प्रशंसकों से घिरे रहते।
यह देखकर भगवान बुद्ध वहां पहुंचे और बोले, बेटा मनुष्य ने सदाचार का ध्यान न दिया, लोगों को प्रभावित करने में ही लग गया तो उसकी उन्नति का द्वार ऐसे ही घिर जाता है जैसे तू अपने प्रशंसकों से घिर गया है। 3, कलकत्ता में वेट लिफ्टिंग दल के खिलाड़ियों का चयन करने के लिए प्रतियोगिता हो रही थी।
निर्णायकों ने रोजेरियों को प्रथम घोषित किया।
तभी रोजेरिया दौड़ता हुआ पास पहुंचकर बोला, महोदय मुझे प्रथम मानकर आपने भूल कि यह अधिकार मुझसे पहले मित्र का है। देखिए वजन उठाते समय मेरे घुटने जमीन से टिक गए थे, उसकी मिट्टी मेरे पैरों पर अभी तक लगी है। रोजेरियों की इस सज्जनता और सत्यता पर सभी लोग मुग्ध हो गए।
4, रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा में केशवचंद्र सेन ने एक लेख छपाया। रामकृष्ण परमहंस ने उसे पढ़ा तो बड़े नाराज हुए, बोले हमें यश की नहीं अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाने की बात सोचनी चाहिए। चरित्रवान का यश तो अपने आप उसी प्रकार फैलता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध। 5. युवक विल्व मंगल को देखकर एक कामनासक्त तरुणी ने कहा, तुम्हारी आंखों ने तो मेरा मन चुरा लिया है। युवक चुपचाप चला गया। दूसरे दिन एक डंडे के सहारे उसी दरवाजे पर पहुंचकर बोला, माता जी यह लो जो आंखें तुम्हें प्रिय थी,
वह अपने पास रख लो।
युवक को अंधा देखकर युवती की कामुकता दूर हो गई और वह भी ईश्वर भक्ति में लग गई। यह विल्व मंगल ही आगे चलकर सूरदास के नाम से प्रकाशित हुए। 6. शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ को प्यार करने लगी।
एक दिन उन्होंने कच्छ से विवाह का प्रस्ताव किया तो कच्छ ने कहा, बहन तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, मेरी बहन के समान हो, तुमसे विवाह कैसे करूँ। देवयानी ने कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करते तो शाप देती हूँ कि मेरे पिता की दी हुई सारी विद्या भूल जाओ।
कच्छ बोले, बहन आदर्श रक्षा व चरित्र की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा शाप सहर्ष स्वीकार है। 59. उदार सहकारिता से हमारी उलझने सुलझेंगी। प्रश्न,
एक पशु और मानव दोनों की प्रगति में इतना अधिक अंतर क्यों है?
सामाजिक आधार पर समझाइए। 2. सहकारिता युक्त की प्रवृत्ति में आध्यात्मिक आदर्श किस प्रकार जुड़े हुए हैं? 3. स्वार्थी व्यक्ति की परिभाषा कीजिए। 4. किस प्रकार इकाई इकाई मिलकर एक विशाल समूह का निर्माण करते हैं?
उदाहरणों के द्वारा समझाए। 5. प्रजातंत्र युग में सहकारिता का महत्व किस तरह है?
प्रतिपादित कीजिए। 6. कृषि, व्यवसाय, उत्पादन, उद्योग आदि में भी सहकारिता का महत्व कहाँ तक है? 7. युग निर्माण योजना इस समय सहकारिता का युग स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रही है। 8. सामाजिक शोषण, अशिक्षा आदि सहकारिता के द्वारा किस प्रकार हल हो सकेंगे? कथाएं।
एक किसान को मृत्यु समीप होने का डैख नहीं था। उनकी वेदना का कारण यह था कि उसके चारों बच्चों में परस्पर वेदना का कारण यह था कि उसके चारों बच्चों में परस्पर बनती नहीं थी।
एक दिन किसान ने उन सबको बुलाया और न कहा, सूत का धागा लेकर आओ।
उसने इकट्ठे कई धागे दिए और एक एक लड़के को देकर तोड़ने को कहा, पर उन धागों को कोई नहीं तोड़ सका। इसके बाद उसने एक एक धागा दिया और तोड़ने को कहा तो सबने ही तोड़ दिया। किसान बोला, बच्चों इन धागों की तरह जो लोग मिलजुल कर रहते हैं उनका बड़ी बड़ी ताकतें भी मुकाबला नहीं कर सकती, पर बिखरे और विसंगठित लोग तो इन अकेले धागों की तरह कभी भी नष्ट कर दिए जा सकते हैं।
लड़के एकता का अर्थ समझ गए और मिलजुल कर रहने लगे। 2. सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय की पर लक्ष्मी जी रुकी नहीं, घर छोड़कर चली गई।
कल तक घर वाले धन के पीछे झगड़ते रहते थे, आज जब धन न रहा और हाथ तंगी में आ गया तब सारी भूल का पता लगा।
फिर से लोग प्रेमपूर्वक रहने और मिलजुल कर काम करने लगे।
एक दिन सेठ ने स्वप्न में देखा, भगवती लक्ष्मी आई हैं और घर में प्रवेश कर रही है। सेठ ने पूछा, अम्बे एक दिन आपकी इनकी प्रार्थना की थी फिर भी आप रुकी नहीं थी, आज स्वयं आने की कृपा की सो क्यों? लक्ष्मी जी बोली, वत्स जहाँ लोग परस्पर मिलजुल कर नहीं रहते वहाँ मैं भी नहीं रह सकती, पर जहाँ सुमति होती है वहाँ तो मैं अपने आप पहुँचती हूँ। 3. एक लड़का पढ़ने के उद्देश्य से बम्बई गया पर पास में कुल 20 रुपये, उसी में खाना खर्च, उसी में पुस्तकें और मकान किराया, सब कैसे चले?
बड़ी देर सोचने के बाद एक युक्ति ध्यान में आई।
रहने के लिए एक किराए का मकान ढूंढा और साथ साथ चार साथी भी, खाने के लिए एक ऐसा ढाबा ढूंढा जहाँ कई लोगों का सामूहिक खाना बन जाता था। पढ़ने के लिए 1 रुपया देकर पीटर पुस्तकालय की सदस्यता स्वीकार की। इस सहकारिता के फलस्वरूप ही उसने बम्बई की पढ़ाई पास की। यह बालक एक दिन उत्तर प्रदेश का गवर्नर तक बना, नाम था के
एम मुंशी। 4. लड़का मचल रहा था, मैं तो अपनी गृहस्थी लेकर अलग रहूंगा, अपने उन्नति आप करूंगा।
पिता ने कहा, ठीक है कल व्यवस्था कर दूंगा, आज इस घर की सफाई तो कर डालो, कहकर एक सीख हाथ में थमा दी।
लड़का खींचकर बोला, कहीं एक सीख से सफाई होती है, बुहारी हो तो लाओ। पिता बोला, बेटा जिस तरह एक सीख अकेली सफाई नहीं कर सकती, एक व्यक्ति अकेला उन्नति नहीं कर सकता, सबको मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। 5. सांसारिक दुखों के अभावों से ग्रस्त देवता और राक्षस ब्रह्मा जी के पास गए और दुख निवारण का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी बोले, परस्पर संघर्ष ही तुम्हारे दुख का कारण है, मिलजुल कर प्रयत्न करो तो सुख शांति से भर जाओगे। देव दनुजों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वन रत्न ढूंढ निकाले। 60. प्रगति के लिए श्रम, सम्मान एवं गृह उद्योगों की आवश्यकता। प्रश्न,
एक आर्थिक कठिनाई हम क्यों उठा रहे हैं? 2. आर्थिक कठिनाई की समस्या को हल करने के लिए क्या करना होगा? 3. जापान के आधार पर समझाएं कि उन्नति किस तरह की जा सकती है। 4. तथा जापान की तरह ही नीति अपनाने पर हमें क्या लाभ हो सकते हैं? 5. हमारे देश में बेकारी हराम है, यह युक्ति हमें किस प्रकार आर्थिक दुर्दशा में से उसे उबरने के लिए पतवार का काम कर सकती है?
7. शिक्षित नारी भी किस विधि से आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद दे सकती है?
8. शिक्षित युवकों की बेकारी समस्या किस प्रकार हल की जा सकती है?
9. युग निर्माण विद्यालय, यह आप किस आधार पर कह सकते हैं कि यह विद्यालय व्यक्ति को रोजगार, आर्थिक उन्नति प्राप्त करने में सहयोगी है?
दस्त सरकार, जनता तथा पूंजीपति इसमें कहां तक सहायता दे सकते हैं।
कथाएं। वन, एक युवक एक साधु के पास जाकर बोला, भगवान कोई ऐसी आशीष दीजिए जिससे मालामाल हो जाऊं। साधु ने कहा, बेटा जा, कोई उद्योग से ही पैसा बढ़ता है, लेकिन युवक को तो अपनी धुन लगी हुई थी, वह अपनी ही जिद करता रहा। साधु ने कहा, अच्छा जा, तू जिस वस्तु को छुएगा वही सोना बन जाएगी। युवक प्रसन्न होकर घर लौटा, जो भी चीज छुई सोना बन गई।
ध्यान रही नहीं, उसके घर के किवाड़, लोटा और खाना तक सोना बन गया। भूख से व्याकुल युवक ने स्त्री से कुछ कहने के लिए जैसे ही उसे छुआ वह भी सोना बन गई।
युवक साधु के पास जाकर आशीर्वाद वापस कर आया और परिश्रम से कमाई करने लगा। टू, एक दिन किसान की सेवा से प्रसन्न होकर एक तांत्रिक ने उसे एक ताबीज देकर कहा, बेटा इससे जो कुछ भी मांगोगे वही देगी, पर एक बार ही देगा, इसलिए पहले तो तुम उद्यम और उद्योग करना, जब बहुत गाढ़ा समय हो तभी उसका उपयोग करना। किसान ताबीज लिए घर लौट रहा था कि उसकी भेंट स्वर्णकार से हो गई। स्वर्णकार ने धोखे से ताबीज खुद ले ली और किसान को दूसरी दे दी।
रात में स्वर्णकार ने ताबीज आंगन में रखकर कहा, सोना की वर्षा हो। सोने चांदी की इतनी वर्षा हुई कि सोनार उसमें दबकर मर गया। उधर गरीब किसान ने तांत्रिक की बात मानकर उद्योग किया, उसी में मालामाल हो गया।
थ्री, बलदेव प्रसाद नामक एक व्यक्ति साधु के पास गए और कहा, महात्मन कोई आशीर्वाद दो कि आर्थिक तंगी से मुक्ति मिले, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। साधु विचारशील थे, लोगों को भ्रमित करने वाले नहीं। बोले, बेटा कमाना है तो आवश्यक नहीं तुम शिक्षित ही हो, जाओ परिश्रम पूर्वक उद्योग करो, उसी से धन मिलेगा।
लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है, बलदेव प्रसाद ने कहा।
उद्योग 5 रुपये से भी प्रारंभ किया जा सकता है, आवश्यक नहीं उसके लिए लाख रू जीरो ही हो।
बलदेव प्रसाद ने 25 में अपने बर्तन दिल्ली में गिरवी रखकर उद्योग प्रारंभ किया और दुनिया के सबसे बड़े धनपति हो गए, बलदेव प्रसाद बिरला बिरलाओं के पितामह।
4, एक चीनी सज्जन जापान गए, वहाँ एक दूध वाले के यहाँ ठहरे। एक दिन दूध वाले को चिंतित देखकर चीनी महोदय ने पूछा, क्या बात है।
दूध वाले ने बताया, आज एक गाय ने नहीं दिया दूध, उससे 2 घरों को दूध नहीं मिल पाएगा, उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे, यही सोचकर डैक हो रहा है। चीनी सज्जन हंसकर बोले, अरे इसमें डैक की क्या बात है, दूध में उतनी पानी मिला दो। जापानी ने कहा, महादेव हम उद्योग करते हैं, धोखा नहीं देते। चीनी बहुत घबराए और समझ गए कि उद्योगी को ईमानदार भी होना चाहिए। 5, महात्मा गांधी के पास जाकर एक युवक ने कहा, बापू भूख से मर रहा हूँ, कोई नौकरी भी नहीं देता, अपने पास कोई साधन भी नहीं है। बापू ने कहा, अच्छा यह बताओ, चींटी मकड़ी मधुमक्खी और जंगल के लाखों जीव किस कारखाने में नौकरी करते हैं तथा उनके पास क्या साधन है, फिर क्या वे लोग भूखे हैं। युवक समझ गया, अभाव धन का नहीं मन का है, उस दिन से वह परिश्रम में जुट गया। 61, अन्न संकट की चुनौती का सामना कैसे करें।
प्रश्न,
एक, हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए कि विदेशों से अन्न क्यों मंगाता है। दो, खाद्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि के लिए क्या किया जाना चाहिए। 3, शाक भाजियों के उत्पादन से क्या लाभ होगा। 4, अन्न के अपव्यय को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। 5, बड़ी दावतों से क्या हानि है। 6, जूठन छोड़ना अन्नदेव का अपमान करना है।
सिद्ध कीजिए। 7, जूठन खाने से स्वाभिमान व स्वास्थ्य दोनों गिरते हैं। सिद्ध करो।
8, भोजन परोसने में क्या सावधानी रखनी चाहिए। 9, सप्ताह में एक उपवास क्यों आवश्यक है।
उपवास के लाभ बताइए।
10, चूहों व कीड़ों से अन्न की बर्बादी बचाने के लिए क्या किया जाए।
11, अन्न संकट को उत्पादन वृद्धि से ही नहीं संरक्षण एवं उपयोग के विवेकपूर्ण तरीकों से भी टाला जा सकना है। सिद्ध करें। कथाएं। 1, श्री विठल भाई पटेल उन दिनों बम्बई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। जब कोई बड़ा आदमी आता तो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को दावत देनी पड़ती, उसमें शराब तो उड़ती ही, मन अन्न बेकार जाता।
विठल भाई पटेल ने कहा, दावतें इस खाद्य की कमी वाले देश के लिए पाप है। उन्हीं दिनों लॉर्ड रीडिंग भारत आ रहे थे, पर उन्होंने तब भी दावत न दी और एक खराब परंपरा का अपने साहस से अंत कर दिया। 2, अन्न छत पर भी उगाया जा सकता है। यह पढ़कर महाराष्ट्र बम्बई के एक साधारण मजदूर लक्ष्मण मंडल ने अपनी छत पर 9 इंच मोटी मिट्टी डालकर मक्का बोई और पहली ही बार वर्ष में 2 बार में 54 किलो मक्का पैदा किया।
उसके इस कार्य की राष्ट्रपति डॉक्टर जीरो जाकिर हुसैन ने सराहना की और उसका मक्का भी खाया। 3, भारतीय किसानों के लिए कृषि फार्म खोलने की आवश्यकता अनुभव हुई तो प्रो जीरो हिगिन बोटाम अमेरिका गए, लोगों ने कुल 50 रू जीरो दिए।
उन्हें अपने कुछ कमी जान पड़ी, अपने पास थोड़ा साधन था, उससे ओहियो के कृषि कॉलेज में भर्ती हो गए और कृषि पंडित बनकर जब बाहर आए और भाषण दिया तो पहली ही बार में 30,000 रुपये मिले। प्रयाग के पास 275 एकड़ भूमि में स्थापित उनका कृषि फार्म कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को प्रेरणा देता है कि उन्हें विशेषता का घमंड करने की अपेक्षा कुछ परिश्रम और रचनात्मक काम का साहस करना चाहिए। 4. बिहार में सूखा पड़ गया, बोने के लिए बीज की कमी समस्या मुंह बाए खड़ी थी। एक गांव के किसानों ने प्रतिज्ञा को वे गांव में एक भी दावत न करेंगे,
मृतक भोज न करेंगे और प्रति सप्ताह एक दिन उपवास रखेंगे। फसल बोने का समय आ गया।
दूसरे गांव के लोग बीज के लिए इधर उधर मारे मारे दौड़ रहे थे, तब इस गांव के लोग बचाए हुए अन्न से खेती की बुआई कर रहे थे। सूखा उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। 5. गांधी के आश्रम में मोटे अन्न की रोटियां बनती, कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते। देवयोग से जेल हो जाने पर जो मोटा अन्न नहीं खाते थे
उन्हें हमेशा पेट की शिकायत रहती, जबकि जिन्हें पहले से ही मोटी रोटियां खाने का अभ्यास था जेल में भी उनका स्वास्थ्य पहले जैसा बना रहा।
6. राशन की कमी के कारण कंट्रोल लगा दिया गया,
गेहूं बड़ी मुश्किल से मिलता। उन्हीं दिनों श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के यहाँ कुछ मंत्री ठहरे।
रसोईया हैरान था, गेहूं का आटा नहीं है, अतिथियों को क्या खिलाएं? टंडन जी ने कहा, बेईमानी करने की अपेक्षा मोटा अन्न खिलाने में कोई हानि नहीं। जौ की रोटियां बनी और मंत्रियों को वही खिलाई गई। उन्होंने मंत्रियों से कहा, हमें मोटा अन्न खाने की आदत हो तो अन्न की कमी कभी भी महसूस न हो।
62. चाक हमारी खाद्य समस्या का हल करेंगे। प्रश्न
1. आज राष्ट्र की प्रमुख समस्या एवं चिंता की बात क्या है? 2. खाद्य समस्याओं को हल करने में प्रत्येक परिवार क्या योगदान दे सकता है? 3. चाकों का उपयोग अन्न से अधिक गुणकारी क्यों है? 4. सरलता से उगने वाले कंद मूल फलों के नाम बताइए। 5. किसानों को शाक सब्जी क्यों उगाना चाहिए? 6. खाली जगहों का उपयोग शाक उगाने में कैसे किया जा सकता है? 7. हर जगह कौन कौन से शाक उगाए जा सकते हैं? 8. फूलों उत्पादन से क्या लाभ है? 9. पौधे एवं नर्सरी लगाने से क्या लाभ है? 10. हरित क्रांति से क्या समझते हो? 11. कम खर्च में थोड़ी भूमि में कौन सा उद्योग पनप सकता है?
कथाएं 1. स्वामी विवेकानंद आहार में शाक भाजी अधिक लेने की बात कहते।
एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, हम आहार शक्ति के लिए खाते हैं, शक्ति अन्न और मांस से अधिक मिलती है, फिर शाक भाजी क्यों अधिक खाएं? इस पर विवेकानंद ने बताया, एक शाक खाद्यान्न की कमी पूरा करते हैं। 2. जल्दी पच जाते हैं, जितनी देर में एक पाव अन्न पचता है साग उतनी देर में एक किलो पचेगा। 3. शाक में खनिज व विटामिन अधिक होते हैं। 4. अनाज और मांस में जितनी शक्ति अधिक होती है उतना ही अधिक मल उत्पन्न होता है, जिससे शरीर में सुस्ती भारीपन रहता है, आयु क्षीण होती है। 5. शाक में जो स्वाद है वह अन्न में या मांस में नहीं। 2. तो किसानों में बहस छिड़ गई। एक कहता था अन्न उपजाने में लाभ है, दूसरा कहता था शाक भाजी में। विवाद में कोई बात निश्चित न हो पाई, तब 2 बीघे खेतों में अपने पक्ष की पुष्टि में प्रयोग का निश्चय किया गया।
अन्न में लाभ बताने वाले ने 40 रुपये का 40 किलो बीज लेकर क्वार कार्तिक के दिनों में फसल बोई, चैत्र में काटी, बैसाख में 8 माह बाद घर आई फसल से 10 मन अनाज मिला, जिसका मूल्य 350 रुपया था। शाक भाजी वाले ने 2 रुपये के बीज लेकर 2 बीघे खेत में गोभी बैंगन और टमाटर बोए, 2 माह बाद फल लगने लगे।
1 माह में उसे 50 मन भाजी मिली, औसत 50 पैसे किलो से उसे 1000 रुपये की आमदनी हुई। 3 महीने में दूसरी फसल तैयार करके उसने फिर 1000 की कमाई करके उसने 3 गुना अधिक लाभ लिया और बहस में विजयी भी हुआ।
3. उत्तर प्रदेश के हरदौना ग्राम के निवासियों ने शाक आंदोलन चलाया।
गांव के भीतर की कोई भी बेकार पड़ी जमीन खाली न रहने दी, सब जगह सब्जी ही सब्जी बोकर पहले ही वर्ष 1000 की आबादी वाले ग्रामवासियों ने 10,000 मन सब्जी पैदा करके हजारों मन अन्न बचाया, साथ ही हरी सब्जी का पोषण भी लोगों को दिया। 4. लकड़ी के बक्सों में विलायती टमाटर उगाने के अभियान में लखनऊ के एक ओवसीय ने अपने मकान में ही इतना टमाटर तैयार किया कि प्रतिदिन टमाटर की सब्जी खाने के बावजूद 5 किलो प्रतिदिन के हिसाब से बिक्री करके पैसा भी कमाया।
5. आचार्य रामानुज जहां रहते थे शाक भाजियां साल भर उगाते रहते।
एक दिन लोगों ने पूछा, आपको थोड़ी सी सब्जी चाहिए, इतनी क्यों उगाते हैं? उन्होंने कहा, हमारे और भाई लोग खाते हैं और हमें यहां हरियाली बने रहने का लाभ मिलता है।
6. अवकाश के समय भाजी उगाने वाले किसान के 1 घंटा प्रतिदिन काम करके घर के सामने पड़ी जमीन से खेती का 5वां लाभ मिला। हिमाचल प्रदेश के इस किसान हेमचंद ने अब पूरी खेती शाक भाजी की करने का निश्चय किया है। 63. वृक्षारोपण और संवर्धन एक अति आवश्यक कार्य। प्रश्न
1. वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? 2. वृक्षों के संरक्षण से मानव समाज को क्या लाभ होते हैं? 3. वृक्षों की तुलना संतों से क्यों की जाती है?
4. वृक्ष बिना कारण ही मानव समाज का हित करते हैं, सिद्ध करो।
5. वन्य प्रदेश में वर्षा अधिक क्यों होती है? 6. वनों से नेत्रों की तेजी बढ़ती है, सिद्ध करो।
7. फल फूल एवं हरियाली के लाभ बताइए।
8. वृक्षों से भूमि संरक्षण कैसे होता है? 9. पीपल बड़ एवं आंवले की पूजा क्यों की जाती है? 10. वृक्ष हमारी खाद्य समस्या को हल करने में कैसे सहायक होते हैं?
कथाएं
एक मास्टर साहब ने प्रश्न किया, बताओ सहारा में जल क्यों नहीं मिलता और अफ्रीका में अमेज़न नदी जितना पानी क्यों है।
छात्र ने उत्तर दिया, सहारा रेगिस्तान है, अफ्रीका में घने जंगल हैं। अध्यापक ने समझाते हुए कहा, अफ्रीका में घने वृक्ष हैं, वे बादलों को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए वहां जलवृष्टि खूब होती है, पर रेगिस्तान में वृक्ष न होने से वर्षा नहीं होती।
दो वृक्षों को शंकर क्यों कहते हैं। एक पुत्र ने पिता से पूछा, पिता ने वृक्ष में जल डालते हुए कहा, बेटा समुद्र मंथन हुआ तब देव और दनुजों ने सब कुछ बांट लिया, पर विष कोई लेने को तैयार न हुआ।
तब उसे शंकर जी ने पीकर मानवता की रक्षा की।
शंकर जी ने तो ऐसा एक बार किया, पर मनुष्य गंदी सांस, धुआं और सरादे उत्पन्न किया करते हैं, उन्हें जीवन भर यह वृक्ष ही तो पान करके वायु शुद्ध रखते हैं, बोलो यह क्या हुए।
महाशंकर पुत्र ने उत्तर दिया, थ्री एक व्यक्ति को स्वर्ग में देखकर महात्मा वपुष चिल्लाए और धर्मराज से बोले, महाराज मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसने कोई पुण्य नहीं किया, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला। धर्मराज हंसकर बोले, क्योंकि इसने बहुत से वृक्ष लगाए हैं, तुम्हारे पुण्य तो नष्ट हो गए, किंतु इसके पुण्यों का लाभ आज भी धरती वाले ले रहे हैं, क्या यह सबसे बड़ा पुण्य नहीं। महात्मा सोचने लगे, अब की पृथ्वी में जन्मा तो मैं वृक्षारोपण खूब करूंगा। फोर्ट चिलांगा के किसान राल्फेंडर को बाग लगाने का शौक हुआ। उनके पास जितनी जमीन थी उस सब में सुंदर बाग लगा दिए।
लोगों ने कहा, खेती करो नहीं तो भूखो मर जाओगे, किंतु आज वही राल्फ सारी दुनिया में चिलोंगा के बागबा के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी आमदनी किसी भी किसान से अधिक है।
फाइव पिता ने पुत्र कहा, बेटा
कृषि के साथ बागबानी का पुण्य शास्त्रों में 10 यज्ञों के समान बताया है।
पुत्र ने कहा, पिताजी यज्ञ से तो वायु प्रदूषण दूर होने का तात्कालिक लाभ मिलता है, पौधों से क्या लाभ।
पिता ने कहा, जितने दिन तुम जिंदा हो तुम फल खाओ, लकड़ियां जलाओ, फिर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के भी बच्चे पेड़ जब तक जिंदा हैं देता रहेगा, मरने पर भी वह काम आता है।
सिक्स ब्रिजियो नामक एक ट्रैवलिंग जहाज पृथ्वी की परिक्रमा करने निकला। यात्रियों को सामान्य भोजन दिया गया। वापसी पर लगभग आधे व्यक्ति बीमार पाए गए, 25 तो मर भी गए।
दोबारा फिर जहाज गया, इस बार यात्रियों को आहार में अधिकांश फल दिए गए तो उसमें से एक दो को छोड़कर कोई बीमार नहीं हुआ।
64 तुलसी हमारे हर घर घर में शोभायमान रहे। प्रश्न,
एक तुलसी के पत्ते का उपयोग पूजा में क्यों किया जाता है। दो तुलसी के सेवन से क्या लाभ है। तीन हर घर में तुलसी का पौधा क्यों होना चाहिए। चार तुलसी को औषधि के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है।
फाइव तुलसी की उपयोगिता पर एक लघु निबंध लिखें। सिक्स तुलसी के लाभ के 5 श्लोक सुनाओ और उनका अर्थ बताओ।
सात तुलसी चरणामृत क्यों लाभदायक है। आठ तुलसी के संबंध में किन किन प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है।
कथाएं, वन भरतपुर के एक वैद्य ने अपनी तुलसी कल्प पुस्तक में लिखा है कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर 5 तुलसी दल पत्ते खाने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता।
दो यज्ञोपवीत चोटी और तुलसी में से आप सबसे अधिक किसे महत्व देते हैं। एक व्यक्ति ने मदन मोहन मालवीय से प्रश्न किया, मालवीय जी बोले, यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई कहे तीन चांदी के रुपयों में कौन रुपया अच्छा है। तीनों ही अच्छे हैं, पर यह समझता हूँ कि यदि तुलसी को महत्व दिया जाए तो शेष दी की महत्ता को लोग अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि तुलसी श्रद्धा और निर्मल बुद्धि का विकास करती है।
थ्री शिष्य ने पूछा, गुरुवर तुलसी वृक्ष और तुलसी वन लगाने को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यदायक माना जाता है, ऐसा क्यों। गुरु ने अलंकारिक वर्णन का रहस्य समझाते हुए बताया, तात यज्ञ धूम से रोग कीटाणु नष्ट होते हैं, वायु शुद्ध होता है, उसी प्रकार तुलसी में ऐसे रसायन होते हैं जिनसे वायु शुद्ध होती और रोग कृमि नष्ट होते हैं।
तुलसी के पत्ते खाने से लेकर उसके समीपवर्ती वातावरण में जाने से आरोग्य बढ़ता है, इसलिए एक तुलसी वृक्ष लगाने को 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्यदायक कहा जाए तो भी कम है। शिष्य ने प्रतिज्ञा की और एक बड़ा तुलसी वन लगाने में जुट गया।
फोर्थ संत तुकड़ो जी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा, हिंदू जाति तुलसी को कन्या मानती है, हिंदू धर्म तुलसी के कन्यादान को पवित्र और आवश्यक मानता है, क्या यह अंधश्रद्धा और उपहासास्पद बात न हुई। संत तुकड़ो हंसे और बोले, नहीं वरन यह भारतीय आचार्यों की वैज्ञानिक बुद्धि का परिचायक है।
तुलसी इतनी उपयोगी है कि उसे कन्या की तरह पालन पोषण की बात कही गई ताकि कोई भी व्यक्ति उसके समीप होने के लाभ से वंचित न रहे।
फाइव माँ ने कहा, बेटा प्रतिदिन स्नान करके तुलसी में जल चढ़ाया करो। बालक ने तर्क किया, उससे क्या होगा माँ,
जल ही चढ़ाना है तो किसी भी पौधे में क्यों न चढ़ाया जाए। माँ बोली, तुलसी में जल चढ़ाना धर्म कृत्य माना है, क्योंकि इन देवी की जड़ से लेकर पत्ते और बीज तक मनुष्य जाति के लिए बड़े हितकारक है। लोकमंगल में रथ चाहे वृक्ष ही क्यों न हो, श्रद्धा रखी जानी चाहिए,
उससे अपनी ही महानता विकसित होती है। बच्चे ने तुलसी वृक्ष में नियमित जल डालना प्रारंभ किया और सचमुच उसी श्रद्धा ने उसे महान बना दिया। यह थे महान विनोबा भावे। 6. डॉक्टर जीरो पाकर से एक पत्रकार ने पूछा, भारत की किस वस्तु ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? पाकर बोले, तुलसी ने।
मैंने देखा कि पंजाब में हर घर में लोग तुलसी लगाते हैं। पूछने पर और प्रयोग करने के बाद मैंने पाया कि तुलसी जैसा उपयोगी दूसरा कोई पौधा नहीं।
7. एक बार आचार्य चरक से एक शिष्य ने पूछा, मृत्यु के समय भगवान आपके समक्ष उपस्थित हों तो आप क्या मांगेंगे? चरक ने उत्तर दिया, नया जन्म जिसमें मैं घर घर जाकर लोगों से तुलसी वृक्ष लगवा सकूं।
इस पुण्य के बदले में कोई भी यश और वैभव अर्जित कर सकता हूं।
65. गौ संरक्षण हमारी एक महती आवश्यकता। प्रश्न,
एक, भारत में गौ पालन का क्या महत्व है? 2. गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है?
3. सिद्ध कीजिए कि गौ रस सर्वांगपूर्ण परिपुष्ट आहार है। 4. गौ रक्षा के महत्व दर्शाने वाले 2 पर्वों का वर्णन करो।
5. राजा दिलीप ने गौ की सेवा क्यों की थी?
6. बैल की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 7. गोवर्धन पूजा का महत्व स्पष्ट कीजिए। 8. गौवंश नष्ट होने के कारण बताइए। 9. गौ पालन के लाभ पर प्रकाश डालिए। 10. गौ दुग्ध गौ घृत के सेवन का व्रत क्यों लेना चाहिए? कथाएं।
एक, गौ हत्या के विरुद्ध आंदोलन कर रहे कुछ स्वयं सेवकों से एक अधिकारी ने पूछा, बताइए लोगों में से कितनों ने गाय पाल रखी है?
एक भी स्वयं सेवक मुंह न उठा पा रहा था।
अधिकारी ने कहा, कितने खेद की बात है कि आप लोग गाय की बात कहते हैं और पालते हैं, भैंस का ही पसंद करते हैं जबकि गुणकारी गाय का ही दूध है। कुछ लोगों ने कहा, गाय का दूध सस्ता बिकता है इसलिए भैंस पालने के लिए विवश होते हैं। अधिकारी ने कहा, गाय का दूध गाय का घी उपयोगी है तो आप लोग उसका दाम बढ़ाइए, न दीजिए लोगों को सस्ते दाम पर उसका लाभ, स्वयं लीजिए तो लोग अपने आप उसकी महत्ता समझेंगे। 2. अरबी कॉलेज लखनऊ के प्रोफेसर मौलाना सैयद मोहम्मद सादिक ने मोहम्मद साहब का विस्तृत जीवन परिचय लिखा और बताया कि जो लोग कहते हैं पैगंबर गौ मांस खाते थे वे गलत कहते हैं, कुरान शरीफ में कहीं भी गौ मांस खाने का समर्थन नहीं है।
3.0.0 सूचना मंत्री K0K0 शाह से एक बार संसद सदस्य नारायण स्वरूप शर्मा ने पूछा, आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं क्या जिनसे गाय की उपयोगिता सिद्ध होती हो? श्री शाह ने बताया, हाँ, कुछ दिन पूर्व रूस के वैज्ञानिकों का शिष्टमंडल भारत आया था। उसके नेता डॉक्टर जीरो शिरोविच बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया कि गाय के दूध में एटॉमिक रेडिएशन से रक्षा करने की सबसे अधिक शक्ति है। अगर गाय के घी को आग में डालकर धुआं उठाया जाए अर्थात हवन किया जाए तो उससे रेडिएशन का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा।
4. डॉक्टर शून्य बुचनन हैमिल्टन से एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा, आप अंग्रेज होकर भी हिंदुओं के गौ पालन का समर्थन करते हैं? श्री बुचनन ने 1880 में भारत में हो रहे पशु धनहरिस के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, भारत कृषि प्रधान देश, इस देश की समृद्धि का कारण गाय ही रही है। गाय की उन्नति के बिना यह देश उन्नति कर भी नहीं सकता।
5. मिस्टर राल्फ ए जीरो हेने से एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बच्चे कभी अस्वस्थ न हो कोई ऐसा नुस्खा बनाइए। श्री हेने ने उत्तर दिया, संतानों को शक्तिशाली और बलवान देखना हो तो उन्हें गाय का दूध और मक्खन रोज दिन में 3-4 बार खाने को दीजिए।
6. शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह ने पांडवों और कौरवों को बताया कि गाय मारना ही पाप नहीं वरन गाय को मारने के लिए बेचना भी पाप है। गाय हत्या का अनुमोदन करने वालों को गाय की देह में जितने बाल होते हैं उतने वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है।
7. पाणिग्राम के विजयमित्र नामक व्यापारी के संतान तो होती थी किंतु कुछ ही दिन में मर जाती थी।
एक साधु ने उसे बताया, उस पर पहले जन्म की गोहत्या का पाप चढ़ा है, यदि वह 100 गौ पाले, पति पत्नी दोनों गौ कल्प करें तो श्रेष्ठ संतान के भागी हो सकते हैं।
विजयमित्र ने गौ कल्प किया, फलस्वरूप उसे श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई।
8. अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक वैज्ञानिक ने गौमूत्र की जांच करके बताया कि भारतीयों ने गौमूत्र और गोबर को इतना महत्व दिया है वह निरर्थक नहीं, रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि गौमूत्र में भी विटामिन तत्व पाया जाता है। 9. गांधी ने एक बार सेठ जमनालाल बजाज से गायों पर विचार करने को कहा, मुझे डैक है कि गाय का हमारे देश में सबसे अधिक महत्व होने पर भी यहां गौ की दशा अत्यंत गिरी हुई है जबकि नॉर्वे और हॉलैंड के कृषि जीवन पर उसका सर्वाधिक प्रभाव है।
66. अधिकार गौण और कर्तव्य प्रधान माना जाए। प्रश्न,
एक, उत्पादन के प्रमुख पक्ष कितने हैं और कौन कौन है? 2. उत्पादन में उचित अंश श्रमजीवी को देना क्यों आवश्यक है? 3. कर्तव्य की उपेक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए?
4. मनुष्यता एवं देशभक्ति का सहज प्रमाण क्या है? 5. मतभेद सुझाने का सही तरीका क्या है? 6. उदात्त भावना का क्या तात्पर्य है? 7. अधिकार से अधिक कर्तव्य का महत्व क्यों है? 8. जापान स्थित अमेरिकन फैक्ट्रियों के श्रमिकों ने काम के 2 घंटा कम करने का सुझाव क्यों नहीं माना? 9. श्रमिक एवं स्वामी के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए समस्या का यथार्थ हल सुझाए। कथाएं। 1. किसान तरबूज बेचने बाजार पहुंचा। एक आदमी ने 1 रुपये में तरबूज लिया, तभी एक सेठ पहुंचे और किसान को 2 रुपये का लालच देने लगे।
किसान ने कहा, श्रीमान जी, जो वस्तु एक बार बेच दी उसके लिए अब 2 रुपये तो क्या 1000 रुपये दो तो भी नहीं दे सकता।
टू प्रसिद्ध वकील रामदास ने एक बार एक मुकदमा लड़ा, उसमें उनके पक्ष की जीत हो गई। पीछे पता चला कि उन्होंने झूठा मुकदमा लड़ा तो उन्हें हार्दिक दुख हुआ और वकालत करना ही उस दिन से छोड़ दिया।
तीन दुकानदार अपने पैसे गिनने लगा तो देखा उसमें कई खोटे सिक्के भी लोग धोखे में दे गए। वह सिक्के नाली में फेंकने लगा तो पड़ोसी ने कहा, मूर्ख, जैसे किसी ने तुझे धोखे से खोटे सिक्के दिए तू भी ऐसे ही किसी को भेड़ दे।
किंतु दुकानदार ने कहा, थोड़े से सिक्के कई लोगों को बेईमानी और धूर्तता सिखाएं, उससे अच्छा तो खोटे सिक्कों को फेंक देना ही अच्छा है।
यह कहकर उसने सिक्के पानी में फेंक दिए।
4. एक भारतीय अमेरिका गए। एक जूते वाले को अपना जूता दिखाकर बोले, भाई, इसकी गठाई का क्या लोगे, 1 रुपया। मोची बोली। वह सज्जन बोले, किंतु मेरे पास तो पैसे कम हैं।
तो कोई बात नहीं, लाइए, आपका काम तो करूंगा ही। उन सज्जन ने जूते ठीक कराते हुए पूछा, क्यों भाई, कम पैसे लेने में तुम्हें हानि नहीं होगी। मोची बोली, होगी तो, पर अपना कर्तव्य न पालन करने से जो हानि होती उससे यह हानि कम है।
5. आजाद हिंद सेना का एक साधारण जवान मर गया। आवश्यक काम बीच में रोककर सुभाष चंद्र बोस अंत्येष्टि के लिए चलने लगे तो जनरलों ने कहा, मामूली बात है, आप क्या करेंगे चलकर। सुभाष बोले, जिस दिन अधिकारी अपना महत्व अधिक समझने लगेंगे उस दिन छोटे न ठीक अनुशासन से चलेंगे न बड़ों को आदर देंगे। वे अंत्येष्टि में उपस्थित हुए और मृतक को सलामी दी। 6. एक आदमी ने एक बिल्ली पाल रखी थी, उसे वह दूध पिलाता था।
दूध के लालच में दूसरी बिल्लियां भी आ जाती थीं, उन्हें भगाने के लिए एक कुत्ता भी पाल लिया।
कुत्ता दूसरी बिल्लियों को देखते ही धरपटकता। एक दिन अंधेरे में उसने घर वाली बिल्ली को दबोच दी। यह देखकर वह आदमी बड़ा दुखी हुआ। उस दिन गांव में नानक पधारे तो उसने अपना दुख कहा।
नानक बोले, अपने पराये का भेदभाव रखने से यही डैक होता है।
उससे बचने के लिए सबके साथ समता का भाव रखा करो।
67. वोटरों की सतर्कता पर प्रजातंत्र का भविष्य निर्भर है।
प्रश्न 1. प्रजातंत्र का क्या अर्थ है?
इस प्रणाली में शासन तंत्र कैसे चलता है? 2. हमारे शासन में अपेक्षित कार्य कुशलता न होने का क्या कारण है?
3. प्रतिनिधि कैसा चुना जाना चाहिए?
4. आजकल नागरिक मतदान करते समय किन बातों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं?
क्यों?
5. वर्तमान परिस्थितियों से मतदान का अधिकार सीमित करना क्यों आवश्यक है?
6. शासकीय कर्मचारी अशिष्टता व भ्रष्टाचार आचरण एवं अवरोध वृत्ति के शिकार क्यों बनते जा रहे हैं?
7. योजनाएं समयावधि को बहकाया जाना सरल क्यों है?
9. लोकमानस का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
10. पार्टियां अपना गौरव क्यों खो चुकी हैं?
कथाएं 1. एक बार वन्य पशुओं ने प्रजातंत्र की स्थापना की, चुनावों की घोषणा हुई।
बाकायदा सिंह दल, श्वान दल, श्रृंगाल दल चुनाव दंगल में उतरे और अपने अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करने लगे।
श्वान दल सबसे बातूनी और चालाक थे, सो उनने जनता को खूब ठगा। पार्लियामेंट में उन्हीं का बहुमत हो गया। अब क्या था, जो भी बिल रखा जाता कुत्ते भूंक भूंक कर अपने पक्ष का तो समर्थन करते और दूसरे पक्ष का विरोध।
सारे राज्य में उन्हीं की तूती बोलने लगी।
पर अब क्या हो सकता था, सत्ता उनके हाथ में आ गई थी। अन्य जीव बिना विचारे कुत्तों के समर्थन पर घोर पश्चाताप करते रहे। 2. चुनाव के दौरान शास्त्री जी अपनी जीप से एक गांव जा रहे थे।
रास्ते में हरे भरे खेतों में लदी मटर की फलियां देखकर साथियों का मन कर आया कि फलियां खाएं।
उन्होंने शास्त्री जी से कहा। शास्त्री जी ने किसान से फलियां तोड़ लाने को कहा। किसान गदगद होकर ढेर सारे पौधे उखाड़ लाए। यह देखते ही शास्त्री जी दुखी हो गए और बोले, मैंने तुम्हें फलियां लाने को कहा था, पौधे उजाड़ने को नहीं।
इसके बाद वे मूल्य चुकाने लगे तो किसान मना करने लगा। शास्त्री जी बोले, मैं प्रजा की भलाई के लिए वोट लेने आया हूं, उनको उजाड़ने के लिए नहीं।
3. त्रावणकोर के राजा गलराज वर्मा का दीवान जैनंदन अपनी प्रजा का घोर उत्पीड़न करता। दीवान ही सख्त था तो अन्य कर्मचारियों को शोषक होना ही था। प्रजा बुरी तरह सताई जा रही थी। आखिर प्रजा ने वेलुथम्पी के नेतृत्व में विद्रोह कर सत्ता को पदच्युत कर दिया। अब दीवान थे वेलुथम्पी।
एक दिन उन्हें पता चला कि कई राज कर्मचारी अभी भी गोलमाल करते हैं। वेलुथम्पी ने उसकी जांच की और यह कहते हुए, शासन कठोर, अनुशासन और दंड व्यवस्था से चलते हैं, उसने उन कर्मचारियों के हाथ कटवा दिए।
फलतः त्रावणकोर से शासन की सारी शिथिलता और बुराइयां दूर हो गई। 4. कन्फ्यूशियम शिष्यों के साथ जा रहे थे। जंगल में एक कुटिया में बैठी एक स्त्री रो रही थी। कन्फ्यूशियस ने रोने का कारण पूछा तो वह बोली, इस स्थान पर एक चीते ने मेरे श्वसुर को खा लिया, एक दिन मेरे पति को भी खा लिया, आज तो उसने मेरे एक लड़के को भी खा लिया।
कन्फ्यूशियस ने पूछा, जब ऐसी बात है तो तुम यहाँ क्यों रहती हो, गांव क्यों नहीं चली जाती?
स्त्री बोली, वहां का राजा बड़ा दुष्ट और स्वार्थी है। कन्फ्यूशियस ने शिष्यों से कहा, तात, स्वार्थी और दुष्ट शासक चीते से भी भयंकर होते हैं।
पांच, प्राचीन काल की बात है।
एक गांव पंचायत ने न्याय व्यवस्था के लिए एक न्यायपालिका का चुनाव किया। 20 सदस्य चुने गए।
जब भी कोई मामला आता, सब अपने देर खिचड़ी अलग पकाते।
न्याय जमाना तो दूर, पंचायत का सारा सुरक्षित कोष ही खा गए वे लोग। गांव के बुजुर्गों ने तब परस्पर विचार किया कि 100 मूर्खों की अपेक्षा विचारशील 5 नेता अच्छे। अगली बार ऐसा ही हुआ, जिससे सब काम व्यवस्थित चलने लगा। 68, प्रबुद्ध नारी महिला जागरण की कमान संभालें। प्रश्न 1, वर्तमान स्त्री जाति को पद दलित स्थिति में पहुंचाने का पापी कार्य किसने किया है? 2, पद दलित स्थिति में पड़े रहने के कारण स्त्री जाति की क्या स्थिति हो गई है? 3, इस विपन्न परिस्थिति में स्त्री को निकालने के लिए क्या प्रयत्न होना चाहिए? 4, इस स्थिति से नारी जाति को निकालने के लिए स्वयं नारी को क्या प्रयत्न करना चाहिए?
5, इस समय स्त्री जाति की तरह जीवन यापन कर रही है। 6, स्त्री जाति को उस अपमान भरे जीवन से निकाल कर ऊंचा उठाने के लिए पुरुषों को क्या करना चाहिए? 7, नारी जाति को ऊंचा उठाने में सहायक ऐसे कौन से कार्य हैं?
8, घर घर में चलाए जा सकने योग्य ऐसे कौन से आंदोलन हैं जिनमें स्त्री जाति की प्रतिष्ठा फिर स्थापित हो सकती है? कथाएं।
1, शिवदेवी शास्त्री जिस स्कूल में पढ़ती, वहां की लड़कियों ने एक दिन शिकायत की कि जब वे गलियों से निकलती हैं तो दुष्ट युवक अश्लील आवाज कसी करते हैं। उनका प्रतिरोध करने की अपेक्षा दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। इस पर शिवदेवी ने लाठी उठाए और उस दिन लड़कियों के साथ स्वयं गई, और गुंडों ने जैसे ही आवाज कसी ही उन्होंने लाठी फटकारी। सैकड़ों लोग उनके सहायक उतर आए और गुंडों की पिटाई की। उस दिन से किसी ने भी लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत नहीं की।
2, पश्चिम घाट मैसौर के श्री अनंत शास्त्री डूंगरे ब्राह्मण को अपनी बहू बेटियों को पढ़ाने और उन्हें भी पुरुषों के समान स्तर पर लाने का उपदेश देते तो जाति वाले बुरी तरह उनके खिलाफ हो गए, यहां तक कि जान बचाने के लिए उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा। उनकी यह दशा देखकर उनकी पुत्री रमाबाई सेवा क्षेत्र में आगे आई। उन्हें स्वयं हिंदी, कन्नड़ और बंगला भाषाएं सीखी और घर घर जाकर स्त्रियों को शिक्षा, पर्दा प्रथा के विरुद्ध तैयार किया और उनमें नई चेतना पैदा की। 3, बंबई के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ सोराबजी फ्रामजी पटेल ने अपनी पुत्री भी काजी कामा को खूब पढ़ाया लिखाया और श्री रुस्तम जी कामा के साथ विवाह कर दिया ताकि वह सुखी जीवन बिता सके। किंतु भीकाजी कामा को विलासी जीवन पसंद न हुआ। उन्होंने सबके विरोध के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और पर्दे वाली स्त्रियों को रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्ति दिलाकर उन्हें भी लोक सेवा के क्षेत्र में अग्रसर किया। तिरंगा झंडा भीकाजी कामा की ही देन है। 4, तुर्की के अमीर उमराव नमाज के बाद आपसी चर्चा कर रहे थे, तभी एक युवक बुरके वाली स्त्री वहां कूदी और बोली, जब तक तुम लोग स्त्रियों को अशिक्षित पर्दे वाली गुड़िया और रूढ़ियों से जकड़े रहोगे, देश उन्नति नहीं कर सकेगा। मुसलमान स्त्री के साहस से क्रुद्ध हो उठे, पर उस अकेली जमीला ने ही नारी जागरण को जो शंख फूंका तो सैकड़ों स्त्रियां घर छोड़कर मैदान में आ डटी। पुरुषों ने हार मानी और तुर्की में भी स्त्रियों को उन्नति का समान अवसर मिला। 5, एक व्यक्ति स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को पर्दे से बाहर लाने और उन्हें पूजा पाठ की इजाजत देने का सख्त विरोधी था। वह महर्षि दयानंद के पास गया और स्त्रियों के खिलाफ न जाने क्या क्या बकने लगा। महर्षि ने कहा, मान्यवर, क्या आप अपना एक पैर रस्सी से बांध लेने देंगे? वह बोला, पांव बांध दूंगा तो चलूंगा कैसे, घर कैसे पहुंचूंगा? अब दयानंद हंसे और बोले, समाज का आधा भाग एक पैर स्त्रियां रूढ़ियों की रस्सी से बांध दी जाए तो भारतीय समाज प्रगति कैसे कर सकेगा?
वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ और उस दिन से स्त्रियों की समान उन्नति का समर्थक बन गया। 6, पति की छोटी बहन ने कहा, भाभी जी, स्त्रियां सोचती हैं हम कुछ नहीं कर सकती, पर यदि करना चाहें तो उन्हें भगवान ने पुरुष से कम शक्ति नहीं दी। इन शब्दों ने श्रीमती एलिजाबेथ स्टो को शक्ति से भर दिया। वे लिखने लगी। उन्हें एक पुस्तक लिखी जिसने अमेरिका में गृह युद्ध करा दिया और अमेरिका सरकार को वर्णभेद समाप्त करने को विवश होना पड़ा। दुनिया की 22 भाषाओं में अनुवादित होने वाली यह पुस्तक तामकाका की कुटिया के नाम से प्रसिद्ध है।
7, इंग्लैंड में 1990 तक स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। श्रीमती पेचर्स्ट ने आंदोलन छेड़ दिया जो शीघ्र ही सारे इंग्लैंड में फैल गया और सरकार को भी स्त्रियों की बात मानने को विवश होना पड़ा। 69, नारी उत्कर्ष के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं। प्रश्न 1, नारी का सम्मान क्यों किया जाना चाहिए? 2, विदेशियों ने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को किस प्रकार गिराया?
3, भारत में नारियों की वर्तमान अवस्था पर प्रकाश डालिए। 4, पर्दा प्रथा से क्या हानियां हैं? 5, भारतीय समाज ने नारी को अबला व अपंग क्यों बना रखा है?
6, नारी जाति का नरिशंस अपमान क्या है?
7, आज हमारे समाज की हालत कैसी है?
8, सिद्ध कीजिए कि अविकसित नारी एक समस्या है।
9, नारी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है?
10, नारी को पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं क्यों मिलनी चाहिए? 11. विचारशील व्यक्ति का नारी समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? कथाएं. 1. एक व्यक्ति महर्षि कर्वे के पास आया और उनकी नारी उत्थान अभियान की आलोचना करने लगा.
महर्षि ने कहा, एक बात बताओ, गाड़ी में दोनों पहिए एक से हों तो अच्छी चलेगी या पहिए छोटे बड़े हों तो?
वह व्यक्ति बोला, वाह, यह तो साधारण आदमी भी जानता है, असमान पहिए वाली गाड़ी चलना तो दूर लुढ़क पुढ़क और जाएगी. कर्वे बोले, मेरे भाई, जब असमान